ओम शांति। आज के पावन पर्व की, रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। हम सभी जिस दिन बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हम सबको ये रक्षा सूत्र बांध दिया और उसी रक्षा सूत्र के अंदर इतने वर्षों से परमात्म रक्षा की छत्र छाया के नीचे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी भी बाबा का जो पहला स्लोगन है, पहला श्रीमत का मंत्र है, वो है बी होली बी योगी। योगी बनने के लिए होली बनना होगा और संपूर्ण होली बनने के लिए योगी बनना होगा। इसलिए हम सभी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम ऐसे सच्चे पक्के योगी बने जो आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान पावन बन जाए। उसी के लिए हर वर्ष निश्चित तिथि अनुसार रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। सभी संकल्प करते हैं दृढ़ता से कि जो भी सूक्ष्म में भी कोई ऐसे अपवित्र संस्कार रहे हुए हैं उन सब को हम समाप्त करेंगे। तो आज के इस शुभ दिन पर आप सब बाबा के घर में आए हैं, जरूर कोई न कोई संकल्प पक्का किया होगा। संकल्प की ही राखी है और ये राखी जब हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, संकल्प रचते हैं कि बाबा जैसा आप बनाना चाहते हो ऐसा हम बन करके दिखाएंगे, तो संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। और संकल्प में अगर बाबा का साथ मिल जाता है तो कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प असंभव नहीं लगता। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में मैं आत्मा संपन्नता को प्राप्त करूं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो हम सब की पढ़ाई का एक एम ऑब्जेक्ट है, उस एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करके संपन्न बन करके बाबा के साथ जाना है। तो बहुत अच्छा है कि आप सभी ने ऐसे दिन को चुना है, ज्ञान सरोवर परिसर में आकर के विशेष तपस्या कर रहे हो। टॉपिक भी ऐसा ही है कि कोई भी उत्सव जो भारत के अंदर मनाए जाते हैं, उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाना, उत्साह में स्वयं को लाना। कोई भी उत्सव उत्साह दिला देता है। जैसे आज हमारी बहनों के अंदर कितना उत्साह रहता है कि हम अपने भाइयों को राखी बांधे। लौकिक में कितनी दूर दूर से बहनें भाई के पास जाती हैं या भाई को बुलाती हैं, उमंग उत्साह बहुत रहता है। और हम सब के इस ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है, क्या है? उमंग और उत्साह ही है। अगर उमंग उत्साह चला गया तो ब्राह्मण जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं जब से आप बाबा के बच्चे बने हैं, चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। आज अगर उमंग ही न हो तो समय पर हम अमृत वेला भी नहीं करेंगे, समय पर हम क्लास में भी नहीं पहुंचेंगे। कहीं आते हैं ऐसे जैसे धक्का दे करके बुलाया जाता है। कई आते हैं उछलते हुए, बाबा की मुरली सुननी है, लेट ना हो जाए, भागते हैं, उमंग उत्साह होता है। ऐसे अमृत वेले अगर उमंग उत्साह नहीं है, एक नियम पूर्वक उठ गए, बाबा तो कहता है मैं बच्चों को सोने नहीं देता हूं, लेकिन अगर मान लो बाबा ने जगा दिया, उठा दिया और आप उठ करके बैठ गए, अगर उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, नशा नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद फिर वही आलस्य आ जाएगा, सुस्ती आ जाएगी। तो चारों ही सब्जेक्ट में अगर किसी को नंबर वन लेना है तो उमंग उत्साह उसका आधार है। उमंग उत्साह सदा बढ़ता जाए, सदा बढ़ता जाए, उसके लिए क्या करेंगे? हमेशा बाबा अपने महावाक्यों में बच्चों के उमंग को बढ़ाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर विशेष बातें सुनाते हैं। आज की मुरली याद है, कितना भाग्य का वर्णन किया, जैसे बाप बच्चों से रूह रिहान करता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। क्या बच्चों का भाग्य है, सवेरे उठते ही भगवान उठाता है, उसके साथ आकर के बैठ जाओ, सब संग का रंग लग जाएगा, कोई मेहनत नहीं करो, सिर्फ साथ में आके बैठ जाओ। तो बैठते हो सभी कि ठीक है, उठ गए, थोड़ी देर गुड मॉर्निंग किया और फिर निंद्रा देवी की गोद में चले गए। अगर उमंग उत्साह है तो बड़े प्यार से बाबा बाबा कह करके बाबा के साथ का, उनके मिलन का, उनकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। फिर उमंग उत्साह है तो जैसे बाबा ने कहा, देखो इतना समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बहाना नहीं करता हूँ, कितनी दूर दूर से पढ़ाने आता हूँ, एक दिन भी कभी अब्सेंट नहीं होता, कभी ये नहीं कहता आज मुझे बुखार है, आज मैं बीमार हूँ, बहानेबाजी भी नहीं करता हूँ कि आज मुझे नींद नहीं आई, भाग भाग करके आता है। चलो शिव बाबा तो आता है, लेकिन जिस तन को लेता है, एक दिन भी ब्रह्मा बाबा ने अंत दिन तक भी मुरली सुनाने के लिए ये नहीं कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा ऑपरेशन हुआ है, आज मुझे खांसी बहुत है। शरीर था ना, 93 इयर्स की एज में बाबा ने एक दिन भी कभी मुरली के लिए बहाना नहीं किया। ऐसे नहीं आज बाबा मैं नहीं बैठ सकता हूँ, आज आप अब्सेंट, आपको छुट्टी देता हूँ। शिव बाबा को भी छुट्टी नहीं दिया बाबा ने, आ जाओ भले मुरली सुना जाओ। तो बाबा के अंदर कितना उमंग उत्साह था। जब बाबा का ऑपरेशन हुआ बॉम्बे के अंदर, छोटा ही ऑपरेशन था, डॉक्टर्स ने कहा था नहीं अभी आपको रेस्ट करनी है, और बाबा ने 2 बजे उठ करके पूरी मुरली लिखी अपने हाथों से, और लिख करके पोस्ट किया कि जाओ बच्चों को दे दो, मधुबन में भेज दो, बॉम्बे में हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, और यहां पर मुरली आई। एक दिन भी इतने वर्षों में 33 वर्ष साकार ब्रह्मा का पाठ, शिव बाबा का पाठ ब्रह्मा बाबा के द्वारा चला, लेकिन एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुई। लास्ट में जिस दिन बहुत तबीयत नीचे ऊपर हो रही थी, आबू में बहुत ठंडी थी, 18 जनवरी को दादी जी एकदम पीछे ही पड़ गई, नहीं बाबा आज आपको मुरली नहीं सुनानी है, मैं बैठी हूं, मैं जाऊंगी सुनाने। बाबा को खांसी हो रही थी, ठंडी बहुत थी, दादी ने बाबा के ऊपर रजाई डाल दी कि आप बैठो, आप आज मुरली सुनाने नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी, जाओ बच्चे। तो सुबह सुबह भले बाबा ने मुरली नहीं सुनाई, शाम को कहता रे बच्ची बाबा को कुछ भी नहीं है, आज बच्चों को भोजन नहीं मिला है, सब याद कर रहे हैं, चलो चलो बेल बजाओ, बाबा आता है मुरली सुनाएगा करके। लेकिन किसको क्या पता था कि ये बाबा की लास्ट मुरली है। 8:30 बजे शाम को बाबा ने बच्चों को बुलाया, क्लास के बीच में सब आए, बाबा गए, मुरली सुनाई, बड़े उमंग उत्साह की मुरली है वो लास्ट वाली भी, और उमंग उत्साह से मुरली सुना के सब कुछ पता है बाबा को कि अभी छुट्टी लेनी है इनसे। गेट पर आकर के कहता है अच्छा बच्चे विदाई, छुट्टी। कोई ने नोट नहीं कर पाया कि ये शब्द बाबा आज तक नहीं बोलते थे, आज गेट पर जाकर के वहां से रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। बच्चे नम्र चेत, निर्माण चेत, निरहंकारी होके रहना, अच्छा बच्चे विदाई, छुट्टी। ये शब्द है बाबा के लास्ट टेप में भरे हुए हैं। और बाबा गए कमरे में और थोड़ी देर में बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दिया, दृष्टि दी और शरीर से अलग हो गए। तो उमंग उत्साह एक ऐसी चीज है कि अगर ये ब्राह्मण जीवन में रहता है तो न कभी पढ़ाई में सोती है, न कभी सेवाओं में कोई प्रकार का बहाना होता है। आलस्य क्या है, बहानेबाजी क्या है, ये सब अपने आप समाप्त हो जाती है। उमंग है, उत्साह है, ये भी नहीं कह सकते आज बीमार हूं। बाबा कई बार कहते थे बच्चे कोई कहे ना, बहन, क्योंकि बहने ही थी सारी संस्था में पहले, तो अगर कोई कहे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी है, बुखार है या मेरे पेट में दर्द है, तो बाबा कहता था बच्ची को सोने नहीं देना, सोएगी तो सोच सोच के बीमार पड़ जाएगी, उसको ले आओ भंडारे में बिठा दो, कम से कम रोटी का गोला बनाए, रोटी पकती है उसको घी लगाए, बैठेगी सेवा करेगी तो बीमारी भूल जाएगी। तो बाबा ने कभी भी बीमारी का भी बहाना कोई न दे, लास्ट तक बाबा ने उमंग उत्साह से सेवा की। इतने सब बच्चों को पत्र लिखा, हर पत्र का जवाब दिया और बच्चों को भी सदा उमंग उत्साह में बढ़ाते रहे, उमंग उत्साह दिलाते। जब कोई प्लानिंग होती है, जब हमारे आगे कोई ऊंचा लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा अच्छा उमंग रहता है। अगर आपके आगे कोई लक्ष्य ही नहीं है, कईयों का जीवन लक्ष्य विहीन है, और लक्ष्य ही नहीं है कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसका उमंग उत्साह कहाँ से आएगा। इसलिए उमंग उत्साह में अगर सदा निरंतर रहना है तो एक बहुत ऊंचा ध्येय, बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के संकल्प करो कि इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना ही है। मरेंगे मिटेंगे लेकिन इस लक्ष्य को पा करके ही छोड़ेंगे, ये है उमंग उत्साह। और आप तो सब सिक्योरिटी विंग वाले हैं, सिक्योरिटी तो तभी की जा सकती है जब आपके अंदर इतना उमंग हो कि मैं देश का रक्षक हूं, मुझे देश की रक्षा करनी है, इसके लिए भले मरेंगे मिटेंगे लेकिन शत्रुओं का सामना करेंगे, हटेंगे नहीं। यही तो सिखाया जाता है। सुरक्षा क्या होती है? देश की रक्षा करने वाले, देश के रक्षक जो होते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, उनका उमंग उत्साह लास्ट तक भी इतना बरकरार रहता है, कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे भले हमें जान गंवानी पड़े। इसको उमंग उत्साह कहते हैं। और ऐसा उमंग उत्साह तभी हमारे ब्राह्मण जीवन में रह सकता है जब हमारा एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि मुझे इस नर्क को स्वर्ग बना करके दिखाना है, हमें इस पतित दुनिया का परिवर्तन करके दिखाना है, हम भगवान के साथी हैं, राइट हैंड्स हैं, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी ऊंचाई निचाई क्यों ना आए, हम उसको पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करके ही छोड़ेंगे। ऐसा लक्ष्य अगर सामने रहता है, हम सब विश्व परिवर्तक हैं, बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन की बहुत बड़ी सेवा की जवाबदारी दी है, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, व्यक्तियों का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन, उसके लिए बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया है। और निमित्त आत्माएं अगर सुस्त हो जाएं, उमंग उत्साह ही न हो, नशा ही न हो, खुशी न हो, तो आज बाबा बड़ा प्यार का शब्द कह रहे थे कि अगर नशे की बोतल रखी हुई हो, कोई पिए ही नहीं तो नशा क्या चढ़ेगा। तो बाबा तो पिला रहा है ना, इतना डोज दे रहा है बच्चे, केवल स्मृति में अंदर अंदर दबा के समा के नहीं रखो, ये ज्ञान, ये सोमान सिर्फ हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ऐसा कहने के लिए नहीं है, उसका स्वरूप बन जाओ, उसको जीवन में धारण कर लो। तो कहते हैं खुद घोटोगे तो नशा चढ़ेगा, दूसरा नशा चढ़ाएगा तो नहीं चढ़ेगा, अगर मैं आपको चढ़ाना चाहूँ तो कितना चढ़ेगा। इसलिए हर एक को खुद चिंतन करके, खुद मनन करके अपने आप को उमंग उत्साह में लाना है। परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बाबा ने आज भी कहा, बच्चे जब अति होती है तब उसका अंत होता है। इसलिए ये बातें हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या करूं, कैसे करूं, तो बाबा कहता है ये तो प्यादा है, घोड़े सवार भी नहीं कहता है, तो प्यादा है। इसके अंदर उमंग उत्साही नहीं है कि कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, प्रकृति एकदम हलचल की डांस करेगी, पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे, सबका तमोगुणी पार्ट है, अंत समय है, इसलिए प्रकृति के द्वारा पेपर आएंगे, शरीर के द्वारा भी हिसाब किताब है, इतने समय इस शरीर से जो पाप कर्म हुए हैं, बॉडी कॉन्शियस में आकर के किसी भी आत्माओं को परेशान किया है, दुख दिया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, वो सब चुकतू होने के लिए सामने आएंगे। क्या करूं, मेरा हिसाब किताब, मेरा बड़ा कड़ा बंधन है, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, मेरे को ये रोकते हैं। जिसके अंदर उमंग उत्साह होता है कोई परवाह नहीं करता, क्या करेंगे हमारा। लेकिन उमंग उत्साह अपना कायम रहे, उसके लिए स्मृति स्वरूप बन करके रहो, भगवान ने हमें चुना है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, इतने बड़े विश्व परिवर्तन के लिए उसने हमें निमित्त बनाया है, केवल दो चार लोग निमित्त नहीं है, लेकिन भगवान ने जिस पर नजर डाली उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं उसकी, यही तो मेरे बच्चे मेरे साथी हैं, यही तो विश्व परिवर्तन में मेरे राइट हैंड है। जब उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी है तो हम क्यों निराश उदास हो जाएं? दादी जी की बातें जब सामने आती हैं तो दादी कभी भी हम लोगों को ठंडा अगर देख ले, एक दिन की बात सुनाता हूं, कुछ तबीयत थोड़ी मेरी नीचे ऊपर थी, तो मैं थोड़ा उदास जैसा था, चेहरे पर वो खुशी रौनक ऐसे आ रहा था, सामने से दादी की नजर पड़ गई सामने गेट पर, ए बूढ़े इधर आओ। क्या बूढ़े बूढ़े क्यों, मेरे बूढ़ा कह रही, बूढ़ी तो खुद दादी है, बड़ी है, और मैं तो 27-28 साल का और दादी 50-60 के साल की। कहती है बूढ़े इधर आओ। क्या हो दादी, क्यों बूढ़ा कह रही, कैसे चलता है बूढ़ों के जैसे, क्या हुआ है? दादी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं कि मन ठीक नहीं, भर दिया जोश, ऐसे थोड़ी चला जाता है, अरे बूढ़े थोड़ी हो, जवान हो, इतना उमंग उत्साह होना चाहिए। अंत तक भी दादी के अंदर वो उमंग उत्साह था कि कभी भी अगर कोई उनको भूल से भी कह दे दादी आपका बुढ़ापा है, मैं बूढ़ी हूं क्या, कौन कहता मैं बूढ़ी हूं। एक बार की बात है कि क्लास के बीच में माताएं आई थी तो दादी उनका हाथ उठवा रही थी, अच्छा जो बुढ़िया बैठी है वो हाथ उठाओ, 60 साल के ऊपर वाली बुढ़िया हाथ उठाओ। तो दादी ने जब हाथ उठाया तो मोहिनी बहन बाजू में बैठी थी, दादी आप भी उठाओ ना, आप भी बूढ़ी। अरे मैं थोड़ी बूढ़ी हूं, कौन कहता मैं बूढ़ी हूं, इतना उमंग से बोली, मैं बूढ़ी नहीं हूं, मैं तो जवान हूं, मैं बाबा की सेवा के लिए कितना उछलती हूं, कितना उमंग है, कितना उत्साह है, मैं बूढ़ी थोड़ी हूं, बूढ़े वो हैं जिनमें उमंग उत्साह नहीं है। तो ये आयु की बात नहीं है, शरीर की बात नहीं है, लेकिन अगर 90 साल का भी, आज जानकी दादी 100 साल की थी, बूढ़ी नहीं अपने को कभी नोट किया, चलो अभी चलना है दादी, यहां चलना है, यहां चलना है, 103 साल की उम्र में अमेरिका घूम रही है, पासपोर्ट देने वाले वीजा देने वाले सोचते हैं दे न दे देश का, लेकिन दादी को देख करके सब दे देते थे कि नहीं भले जाए, इनके अंदर इतना उमंग है, इतना उत्साह है। तो अंत तक भी इन दादियों ने अपने उमंग उत्साह को बहुत बरकरार रखा, कभी भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ा, मैं बीमार हूं, मैं बिस्तर पर हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहाना तो वही करता है जिसके अंदर उमंग उत्साह नहीं है। और इन दादियों के अंदर इतना उमंग उत्साह था, अभी अभी देखो तो ऑक्सीजन की वो बोतल चढ़ाई हुई है, ड्रिप चढ़ रही है, और थोड़ी देर के बाद देखो उठ करके क्लास कराने जा रही है, उठ करके यहां से अमेरिका पहुंच गई, लंदन पहुंच गई। एक दिन की बात सुनाता हूं दादी जानकी, कुछ हुआ अचानक बोलना बंद कर दिया, बोले ही नहीं, चुप एकदम मौन हो गई, और मैं बहुत नज़दीक था दादी जानकी के पास गया, मेरे को कहीं जाना था किसी सेंटर पर, भट्टी थी, प्रोग्राम था, तो मैं गया दादी को बोला दादी मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ ब्लेसिंग्स देंगी, जैसे पहले बोलती हैं यहाँ जा रहे हो वहाँ ये कहना, वहाँ ये बताना, वहाँ ये करना, बहुत सारी बातें गाइड करती थी। लेकिन उस दिन चुप, बोले ही नहीं। तो मैंने मुख से निकला दादी अगर आप बोलेंगी नहीं ना तो मैं अभी कोई सेवा नहीं करूंगा आपकी। तो ऐसे देखती है, बोली नहीं, फिर भी नहीं बोली। लेकिन दो चार शब्द मैंने जब बोल दिए ऐसे तो सुन लिया चुपचाप अंदर अंदर। क्यों नहीं बोलती थी कुछ पता नहीं, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने समझा शायद कोई नस के अंदर कोई खराबी आई होगी बोलने वाली। तो मेरे मुख से निकला दादी आपने मेरे को कहा था कि जब मेरा शरीर छोड़ेगा ना तो मेरी अर्थी भी बोलेगी। ये दादी के शब्द थे, मेरी अर्थी भी बोलेगी, मैं बिना बोले नहीं रह सकती। तुमने दादी आपने तो कहा था मेरी अर्थी भी बोलेगी और आप तो अभी बैठे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बोली नहीं, चुपचाप शांत। तो हंसा बहन है ना उनकी, हंसा बहन उनको युक्ति से लंदन लेके चली गई दो तीन दिन के बाद। और लंदन में जाते ही बोलना शुरू कर दिया। क्या उनको जादू लगा लंदन का, क्योंकि वहां पालना दी है, कितना हवा पानी वहां का उनको सूट कर गया है। ज्यों गई लंदन में बोलने लगी और कहती अभी अभी जाते ही कमरे में कि राजीव को फोन लगाओ और वीडियो कॉलिंग करो। मैं भी कहीं जब विदेश कहीं मैं भी भारत के अंदर सेंटर पर था, मेरे पास फोन है, मैं दादी का फोन शायद मधुबन से आया होगा, वो तो लंदन में थी। और मेरे को फोन ऐसे देख करके सामने देखा वीडियो पर, अरे तुम मेरे कमरे में आ गया क्या, मैं अभी तैयार नहीं हुई हूं। हंसने लगी बहुत जोर से हंसी, कहती देख मैं बोलने लगी हूं। ठीक है दादी आप बोलने लगी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है, इतना उमंग इतना उत्साह। तो ये हमारी दादियों ने इस यज्ञ को इतना विस्तार दिया है उसी उमंग उत्साह के आधार से, चाहे धन था या नहीं था, साधन थे या नहीं थे, सेवाओं के कोई फील्ड थी या नहीं थी, कितने विरोध थे, कितना सामना करना पड़ा, कितनी बातें आई, लेकिन उमंग उत्साह कभी कम नहीं हुआ। ओम शांति भवन बनाना था, दादी को क्या उमंग उत्साह, शाम को चलो चलो पहाड़ी उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, नौकर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, मिस्त्री नहीं है, पैसा नहीं है, और ओम शांति भवन बनाना है पहाड़ के ऊपर। दादी आगे आगे वहां ही कहेगी चाय बना के ले आओ, यहाँ रखो चाय, कोई चाय भंडारे में नहीं पीने जाएगा, सब यहीं आएंगे पियेंगे, चाय पकौड़ा बना दो और सबको बुला करके उठाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब। दादी खुद खड़ी है उठा करके, पत्थर एक के हाथ में दूसरे के हाथ में दे रही है, एक दूसरे को हाथ में हाथ देते, इतना बड़ा पहाड़ साफ करके, इतना सुंदर, ये 10 मास में 12 मास में ओम शांति भवन बना दिया, कोई पैसा नहीं, कोई मजदूर नहीं, मिस्त्री नहीं। ये है उमंग उत्साह। अगर किसी के अंदर उमंग उत्साह है ना तो धूल में भी फूल खिला सकता है, रेत में भी हरियाली ला सकता है। तो ये दादियां हमारी करके सिखाया है, कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह कम न हो, परीक्षाएं कैसी भी आए, और तो वो तो आनी है, वो तो निश्चित भावी है ड्रामा की, कोई छोटी सी बात आ जाती। आज कोरोना थोड़ा सा आ गया, रोना शुरू हो गया, हाय हाय, और भगवान कहता है इसकी दुनिया का तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ये क्या बड़ी बात किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी छोटी सी बात में उलझ गए तुम, बहुत बड़े बड़े पेपर आएंगे, तैयार हो, तैयार हो करके जाना सभी है? इतना शक्ति भरो, इतना मनोबल बढ़ाओ, कोई भी परिस्थिति आएगी भगवान हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान साथ है, क्या बड़ी बात है, सहज पार हो जाएंगे। बाबा के साथ से अगर क्या होगा, मान लो कोई ऐसी बात आ भी गई तो बाबा कहता बच्चे तेरी खुशी नहीं जानी चाहिए भले शरीर चला जाए, खुशी तो नहीं जानी चाहिए, अगर खुशी कायम है, उमंग उत्साह कायम है, शरीर छूट जाएगा तो अगला शरीर और अच्छा मिलेगा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अब तुमने हाय हाय करके शरीर छोड़ा तो तेरा शरीर अगला भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने तो इतना हम सबको पक्का कराया है बच्चे, कुछ भी हो जाए दुनिया ऐसे हो जाए उलट पुलट, लेकिन आपकी खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए, आपका उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। क्या ये विघ्न है? विघ्न विघ्न सोच करके कहीं तो तिल को ताड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को एक पहाड़ बना देते हैं, सोच सोच करके ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। योग करेंगे ना, हम देख रहे थे आए, ऐसे बैठे हैं जैसे जानते ही नहीं भगवान है कौन। अरे भगवान मिला है, बाबा कह रहे हो उसको आप सब, उसकी याद में तो कितना चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। उदास बाबा कहता मुर्दा बैठा है, मुर्दा मुर्दे थोड़ी हो। ऐसे उमंग उत्साह से योग करो, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कौन मेरा साथी है, हम कोई मंत्र थोड़ी जाप कर रहे हैं। अरे आज मंत्र जाप करने वाले, भक्ति मार्ग के अंदर मूर्ति के आगे बैठने वाले, कितना नशा होता है। भगवान के आगे बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और यहाँ चैतन्य में हमको भगवान का परिचय है, संबंध है, प्राप्तियां हैं, हमारे साथ है, सन्मुख है, अनुभव भी कर रहे हैं, फिर भी क्या बताऊं। अरे हिमालय को क्रॉस कर जाता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। योग करो, बड़े नशे से करो, किससे मिलने जा रहा हूं, किससे बातें हो रही है मेरी, कौन मेरा साथी है, कोई देहधारी थोड़ी है, कोई साधारण मनुष्य आत्मा से थोड़ी हम मिलन मना रहे हैं, डायरेक्ट भगवान से बातें कर रहे हैं, यथार्थ पहचान सहित बातें कर रहे हैं। वो हमारा पिता है, बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। इतने नशे और उमंग उत्साह से बाबा को याद करो, ये विघ्न, ये बातें, शरीर की बीमारियां अपने आप भूल जाएंगी, कुछ भी नहीं है ये सब। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तो कई बार ऐसा सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, सोचने की ये बीमारी जो है ना बहुत खतरनाक है, सोचने की बीमारी। सोच लिया ऐसा हुआ, मेरे को इसने ऐसे कह दिया, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और बाबा कहता है ये चीजें तुम्हारी मांगने वाली नहीं है, मांगने से नहीं मिलती, तुम दूसरों को देना सीखो। अगर तुम दूसरों को दोगे, खुशी दोगे, आपके अंदर खुशी भरपूर हो जाएगी। दूसरों को इज्जत दोगे, स्नेह दोगे, आपके अंदर सब आपको देना शुरू कर देंगे। अब मांग क्यों रहे हो? किसी ने नहीं दिया तो बाबा कहता है फां हो गया, और दे दिया तो इतना उल्टा नशा चढ़ गया। ये बैलेंस नहीं है। योगी जीवन माना बैलेंस। कोई महिमा करे या कोई ग्लानी करे, क्या कहते हैं योगी के लिए? निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि सब में समान स्थिति। तो कुछ भी हो, होगा कलयुग के अंदर, ऐसे नहीं माया। बाबा कहता है अगर तुम माया को 10 थप्पड़ मारते हो तो 5 नहीं लगाएगी क्या तुमको? युद्ध का मैदान है, योद्धे हो आप, युद्ध कर रहे हो तो भी तो कुछ करेगी, विदाई के समय तो और जोर लगाएगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, फा नहीं हो जाओ, दिल से कष्ट नहीं हो जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, आ गया स्वप्न, आ गई बात, संकल्प आया, मैं विजयी बन करके दिखाऊंगा। हाय क्यों आ गया, मेरे सामने आ गया, मैंने ये संकल्प लिया फिर भी ऐसे हो गया। बाबा कहता बच्चे क्यों सोचता है, हो गया हो गया, बीती को बिंदी लगा, आगे बढ़ जा। तो बाबा ने हम बच्चों के उमंग उत्साह को कायम करने के लिए, बढ़ाने के लिए कितने समान याद दिलाए हैं, कितनी रमणीकता से मुरलियां सुनाई हैं। अच्छा बच्चे आराम करते हो ना, आराम। आज क्या कहा, राम को बुला लो, उसकी गोदी में सो जाओ, उसके साथ सो जाओ, कितना आराम की नींद आ जाएगी। भोजन कर रहे हो, भगवान की भंडारी से खा रहे हो, बड़े प्यार से बाबा का। ब्रह्म भोजन नहीं है, ब्रह्मा भोजन हम खा रहे हैं। करावन हार करा रहा है, कराने वाला वो है, मैं ना आ जाए मैं करता हूं, जहां मैं आया वहां माया आ गई, खुशी गायब हो गई। तो उमंग उत्साह को कायम रखने के लिए बाबा की ये सब मीठी मीठी शिक्षाएं स्मृति में लाओ, उसका स्वरूप बन जाओ, अपने आप उमंग उत्साह बहुत भरपूर रहेगा। आपको कोई देख करके कह रहे आपको क्या मिला है भाई, इतने दुख के पहाड़ गिर रहे हैं दुनिया के अंदर, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतने टेंशन हो रहे हैं, इतनी बीमारियां आ रही हैं, और आपका तो चेहरा इतना खुला खुश नुमा है, खुश मिजाज है, जो आपको लगता ही नहीं कोई दुनिया की ये प्रॉब्लम है। अगर बाबा के बच्चों के आगे भी वही प्रॉब्लम हो जो दुनिया वाले झेल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बाबा मिला है। निश्चय है भगवान मिला है हमको। अगर सचमुच ये निश्चय है कि भगवान हमको मिला है, वो हमारा बाप है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा गाइड है, तो कैसी भी बातें क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे चेहरे पर उदासी के, निराशा के, दिल से कश्ती के चिन्ह नहीं दिखाई देने चाहिए। सदा उमंग, सदा उत्साह। बाबा के शब्द अंडरलाइन करना, हर बात में अव्यक्त बाबा ने सदा शब्द का प्रयोग किया है। सदा, ऐसा नहीं कहा कभी कभी, समटाइम समटाइम, ये शब्द बाबा को अच्छा ही नहीं लगता था। कोई विदेशी कहते समटाइम, क्या बोलते हो समटाइम, सदा। अंडरलाइन करो, हम बाबा के बच्चे बने हैं, कोई भी घड़ी ऐसी ना हो जो जीवन बिल्कुल उदास, निराश, हताश हो जाए। रोज नए नए सामान लो, जहां वैरायटी और नवीनता है, जहां संकल्पों में वैरायटी है, जहां योग में नवीनता है, एक जैसा योग करो, बोर हो जाओगे, थक जाओगे। रोज मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं, ऐसे लोग योग करने बैठते हैं, 5 मिनट बाद सोचते हैं अब क्या सोचना है इसके बाद, फिर कहेंगे मेरा तो योग ही नहीं लगता। जैसे बाबा ने स्टेप्स नहीं बताई हैं, इतना सब बाबा योग की अनेक विधियां, अनेक युक्तियां बताता है। बच्चे योग योग क्यों कहते हो, योग शब्द तो हठयोगियों का है, तुम्हारे को तो बाबा कहता मुझे याद करो। अब याद करने के लिए कोई माला, मूर्ति, हठ, आंख बंद करने की, नाक बंद करने की जरूरत है क्या? बड़े प्यार से बाबा के प्यार में खो जाओ, मेरा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, बच्चा भी बन जाता है, सर्जन भी बन जाता है। ऐसे बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों से रूह रिहान करो, बातें करो, जब कोई आवश्यकता है उसी आवश्यकता से बाबा को बुलाओ, डायरेक्ट बातें करो, डायरेक्ट कनेक्शन मिला हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन की बहुत वैल्यू होती है। आप लोगों को इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है? जिनका इनडायरेक्ट हो हाथ उठाओ, थोड़ा यहां नहीं आए हैं। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? बहने भाई उदास होके मेरी सभा में नहीं बैठो, यहां क्लास में सोते हुए नहीं हम देखने चाहते। डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई नहीं, ये नहीं कहा इनके थ्रू याद करना, अपनी दीदी के थ्रू याद करना, भाइयों के थ्रू याद करना, यहां तक कह दिया ब्रह्मा के थ्रू भी याद नहीं करो। कोई मेहनत आती है, मुश्किल लगती है, तो ये मीडियम है तुम्हारे सामने, इनसे बात कर लो कि बाबा आप मुझे उससे मिला दो, मेरा योग नहीं लग रहा है। ऑपरेटर की क्यों जरूरत पड़ती है? आजकल तो खत्म हो गया ऑपरेटर। ऑपरेटर पहले रहते थे टेलीफोन जोड़ने के लिए, कभी लाइन नहीं लगती थी तो ऑपरेटर को कहते थे भाई ये लाइन थोड़ा मिला दो, मिला देता था। बाबा कहता मान लो आज आपकी लाइन नहीं लग रही है, तो ऑपरेटर तो बैठा है ब्रह्मा बाबा, उसको बोलो बाबा थोड़ा शिव बाबा से मेरी बातें तो करा दो, आप तो रोज करते हो। प्यार से बाबा को कहो, अपने आप कनेक्शन जोड़ देगा, कहीं से लूज होगा तो जोड़ देगा। लूज हम कर रहे हैं, देह मन में हम रहते हैं, कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, उसका कारण है बॉडी कॉन्शियस। अगर बाबा से मुझे शक्तियों का अनुभव नहीं हो रहा है, माना मैंने अपने आप को इस देह से डिटैच नहीं किया, जब तक मैंने अपने को आत्मा निश्चय नहीं किया, विदेही नहीं बने, तब तक उस विदेही बाप से बातें कैसे होंगी, शक्ति कैसे मिलेगी, रूह रिहान कैसे लेंगे? इसलिए रिस्पॉन्ड अगर प्राप्त करना है तो समान बनना पड़ेगा। भक्ति के अंदर तो कहा आप बड़े ऊंचे हो, बहुत महान हो, मैं तो नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। बाबा कहता अरे बच्चे क्या कहते हो, लज्जा नहीं आती, मेरे बच्चे हो, भगवान के बच्चे कभी ऐसे कहेंगे क्या? समान बन करके याद करो, तो मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, उस समान में स्थित होकर के फिर बाबा से बातें करो। मैं छोटा हूं, मैं अभी अभी आया हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे तो बड़े कड़े संस्कार हैं, मेरे को बार बार विकारी संकल्प विकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं भूल जा, जो हो गया बीती को बिंदी लगा दो, उसको ज्यादा सोचो नहीं। अगर बीती को बिंदी लगाना आ जाएगा, बीती बातें तो इतिहास बन गई, और आने वाली बातें रहस्य हैं, किसने कल देखा? इसलिए बाबा कहता है भविष्य की चिंता नहीं करो, बीती का चिंतन नहीं करो, वर्तमान में जीना सीख जाओ। जिसने वर्तमान को अच्छा बना लिया, आपने वर्तमान को अच्छा बनाया, आज मेरा अच्छा बीते, आज मैं बाबा की याद में पुण्य कर्म करूं, श्रेष्ठ कर्म करूं, तो कल तो निश्चित अच्छा होने वाला है। आज का ही तो दर्पण कल है। एक दिन मैंने किसी से पूछा, आप त्रिकालदर्शी हो? तो कहते हाँ, बाबा ने कहा है आप त्रिकालदर्शी हो। हमने अच्छा कल क्या होने वाला है? तो सोचने लगी, हमने मान लो कल महाविनाश हो जाए, बम गिर जाए आकर के, तो क्या अच्छा हुआ ड्रामा में? अच्छा हुआ? क्या बोलेंगे भाई लोग? बोलो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अभी हमारी नई दुनिया बहुत समीप आ गई है। हम तो अभी गेट खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे तो गेट कैसे खुलेगा? प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी तो सतयुग का गेट कैसे खुलेगा? हम सतयुग के गेट का इंतजार कर रहे हैं, परम धाम गेट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी खोल दो बाबा। और हम कहते ये होना ही नहीं चाहिए, ये हम रोक दें। कैसे रोकोगे? रोकने के लिए थोड़ी योग कर रहे हैं। परिवर्तन है, सृष्टि का एक परिवर्तन नियम है, और परिवर्तन होना ही है। रात को जाना है, दिन को आना है। तो जब जाने वाली चीज जाएगी, विदाई लेगी, तो खुशी खुशी से दे दो ना। हाय हाय क्यों कर रहे हो? विदाई दे रहे हैं हम, कलयुग को विदाई दे रहे हैं। और इसको विदाई का समय तो जानते हैं कि इतना खतरनाक होगा। इतनी बड़ी आबादी है, इतना विस्तार किया है, इतने सब कल कारखाने, इतनी सारी चीजें हमने तैयार की बनाई है, तो जाएंगे तो दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी। इसलिए उसमें दुख न हो, तकलीफ न हो, और बड़े खुशी खुशी से उमंग उत्साह से कहें हाँ भाई तुम विदाई ले, मेरी नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा अपने बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। अपने बच्चों को कहता, बच्चे इंश्योर करो कुछ, आपके पास जो तन मन धन शक्तियां हैं सब सतयुग के लिए ट्रांसफर कर दो, बैग बैगेज ट्रांसफर कर दो। कहीं जाना होता है तो ट्रांसफर कर देते हैं, दे देते हैं, वहां मिल जाएगा। तो बाबा के कार्य में मेरा कुछ तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ है, बड़े दिल से उमंग उत्साह से लगाओ बाबा के कार्य में, आपको कई गुना होकर के रिटर्न में सतयुग में मिल जाएगा। बाबा ने विधि बताई है, लेकिन कहते हैं हाँ पता नहीं, अंत में पता नहीं मुझे जरूरत पड़ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, करूं या न करूं, सोचते रहते हैं कई। और सोचते सोचते अगर चले गए, उड़ गए शरीर से, तो भाग्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जो संकल्प जो श्वास श्रेष्ठ संकल्प उठ रहे हैं, जो श्वास से उठ रही हैं, जो शुद्ध संकल्प आता है, कल काल का नाम है। कल कल करोगे तो काल आ जाएगा, इसलिए जो करना है अब कर लो। बाबा का एक महामंत्र शुरू से रहा है साकार बाबा का, अब नहीं तो कभी नहीं। कोई भी मैटर लिखवाया, बच्चे नीचे लिखो अब नहीं तो कब नहीं। अगर आज नहीं किया तो कल किसने देखा? जो शुद्ध संकल्प, जो पवित्र संकल्प, जो सफल कहने का संकल्प उत्पन्न हो, उसमें डिले नहीं करना, नहीं तो माया बीच में आके रोक देगी, करने नहीं देगी। और अगर कोई ऐसे बहुत गलत ख्यालात आ जाते हैं, कोई गुस्से में कोई संकल्प आते हैं, उत्तेजना में आते हैं, ठहर जा थोड़ा, धैर्य बत, उस समय नहीं करना, तुरंत नहीं करना, नहीं नुकसान हो जाएगा। कमजोर संकल्पों को रोकने की जरूरत है, और अच्छे अच्छे जो शुभ संकल्प आ रहे हैं, सफल करने के संकल्प आ रहे हैं, अभी कर लो, आज ही कर लो, डिले नहीं करना, नहीं तो अंतकाल अचानक आ गया तो सोचते ही रह जाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। एक भाई ने एक बहुत बढ़िया सेंटर बनवाया, प्रैक्टिकल की बात सुना, तो बहुत बढ़िया 3 मंजिल का सेंटर बनवाया। ऊपर के कमरे में खुद रहता था, नीचे बहनों को रख दिया, अपना पूरा संपत्ति उस सेंटर में लगा दिया। हमारे रमेश भाई बड़े स्ट्रिक्ट थे, यज्ञ के ट्रस्टी थे। उन्होंने बार बार उसको कहा, ब्रह्मा कुमारी का सर्टिफिकेट अगर लेना है तो इसको ब्रह्मा कुमारी के नाम करो, बिल करो, ट्रांसफर करो। अरे मैं बैठा हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो? मैं कर दूंगा। अचानक हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होते ही मेरा कोई नहीं कहता था, सब कुछ जीते जी सफल करने की कोशिश की, और जब चला गया उसके बाद उसके कहां कहां के मरे हुए संबंधी भी जिंदा होके आ गए। वो मेरा दादा था, मेरा चाचा था, उस पर मेरा अधिकार है। दादी ने कहा भाई तुम चुपचाप उस सेंटर को वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी। क्या सफल किया उसने, 3 मंजिल का मकान सेंटर के लिए बनाया, बहनों को रखा, लेकिन बस डिले, डिले इज डेंजर। कर लेंगे, हो जाएगा, अभी मैं जिंदा हूं ना, मर थोड़ी गया हूं। ऐसे ऐसे संकल्प करते करते अचानक चला गया और जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब लौकिक वाले ले गए। सफल ही नहीं कर पाया कुछ, क्या भाग्य बना होगा उसका। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो अच्छा संकल्प आ जाए कल कभी नहीं कहना, कल काल का नाम है, तुरंत कर लो, अच्छे संकल्प को सफल करो। तो हम सब के अंदर ये उमंग उत्साह है तो कोई रुकावट नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, कोई बंधन नहीं है। कोई बाबा को कहे बाबा क्या करूं मेरे बंधन है, कभी कुमार आके कहे ना बाबा माँ बाप मुझे बहुत कहते हैं शादी तो करनी पड़ेगी नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा, तुम भले निकल जा घर से, और बाबा से अगर पूछने आएगा तो बाबा क्या कहेगा, कर लो बच्चे कर लो। पूछने आएगा तो कहेगा कर लो, मुरली में कहेगा अरे तो पाप है शादी बर्बादी है नहीं करना। पूछने आया मानव कमजोर है तब पूछ रहा है, और बाबा अगर कहेगा नहीं करो और फिर कर लेगा तो डबल पाप चढ़ जाएगा। प्रेम दिल है बाबा, जानता है कि मैंने इसको अगर डायरेक्ट कह करके इसको मना किया और फिर जाकर के कर लिया तो संपूर्ण अवज्ञाकारी हो गया। इसलिए बाबा तो कभी नहीं कहेगा। कोई कहा मुझे खाना पड़ता है, मुझे रंगीन ड्रेस पहननी पड़ती है, मुझे सिनेमा में जाना पड़ता है, हाँ हाँ बच्चे जरूर जाओ, क्यों नहीं जाओ। लेकिन अगर अपना उमंग उत्साह है, अपने अंदर लगन है, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकते। जहां लगन है वहां विघ्न है ही नहीं। लगन माना क्या, लगन माना उमंग उत्साह, लगन माना बहुत जिगरी बाबा से प्यार। जब हमारा बाबा से भगवान से प्यार है, देखो मीरा भक्तिन को, मेरा तो गिरधर गोपाल, क्या उसके आगे क्या नहीं लोगों ने किया, कितना सताया लेकिन हिली पास हो गई। चाहे वो सांप की टोकरी आई, चाहे जहर का प्याला आया, कोई की परवाह नहीं की। तो जब उमंग उत्साह है, निश्चय है, जब एक बल एक भरोसा है, तो कैसी भी बातें आए, कितने भी विघ्न आ जाएं, कुछ भी नहीं है, कोई की परवाह नहीं करते। हनुमान जी ने कोई विघ्न का परवाह किया था ना, कभी सोचा था कि ये मेरी पूछ में आग लगा रहा है, वो भी भगवान की महिमा करता था, वाह वाह भगवान, वाह राम वाह राम। और करते करते जब उसने पूंछ लंबी की और लपेट दी गई, आग लगाई गई, तो वो भी भगवान देख तूने बिना खर्चे के इतना सब कर दिया, अभी लंका जला देता हूं। तो इस लंका को जलाने के लिए हनुमान जैसा उमंग उत्साह चाहिए, अंगद जैसा निश्चय चाहिए। क्या निश्चय था, दबा दिया पांव रख दिया कि अगर तेरे अंदर कोई महाबली है हिलाकर तो दिखा दो, हिला दो तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। अब सीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन चैलेंज कितनी बड़ी है। एक बंदर, एक छोटा सा राम का सेनानी, वो इतनी बड़ी चैलेंज कर रहा है कि वो जानता है कि राम जिसके साथ है वो ये क्या कर सकते हैं, सीता को तो हाथ ही नहीं लगा सकता है कोई। वो निश्चय था, वो उमंग था, उसके आधार से उसने पांव रख दिया और सारे सेनानी आए हिलाने की कोशिश की, कोई नहीं हिला पाए। और जब रावण खुद आया तो क्या कर लिया, अपना पैर पीछे कर लिया, तुम मेरे आगे झुकता है, तुम राम के आगे झुको। यह है चैलेंज, यह है उमंग उत्साह। कलयुग के अंदर मान मिले अपमान हो, कोई आसन दे सिंहासन दे न दे, उसने अपनी पूंछ को ही आसन बना लिया। और रावण के सिंहासन जैसा जब उसका आसन बन गया, तब उस पर बैठ के उसे डायलॉग किया, रामायण कहां की बनी है, यहां की तो है, संगम युगी ब्राह्मणों का यादगार है। हम ब्राह्मण उस नशे में रहें, उस उमंग उत्साह में रहें कि हम राम की सेना के हैं, ये रावण वाले संप्रदाय वाले मुझे सम्मान दें या न दें, मेरे पास समान इतने हैं, अपने समान में रहो, कोई मान दे या अपमान करे। पूछ है हमारी लंबी, अभिमान वाली पूछ नहीं है, समान वाली पूछ है। उसका चिंतन करो, उसकी मस्ती में रहो, दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे सदा उमंग उत्साह एक रस स्थिति में रह करके, जितने भी विघ्न कलयुग के अंदर आए, शरीर के आए, संबंधों के आए, प्रकृति के आए, सरकार के आए, भटकती हुई आत्माओं के आए, आते हैं, आने दो। बाबा मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, मेरे साथ साथ रहता है, उसके साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूं, उस नशे और निश्चय से चलो, कोई की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बेपरवाह वासा, बेगमपुर के वासा।
ओम शांति। भाई जी के अनुभव युक्त क्लास हम सब सुन रहे हैं। सचमुच बाल्यकाल से हम सुनते आए हैं कि कहते कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो भाई साहब ने जानकी दादी के साथ का कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और ये हम सब का परम सौभाग्य है कि भाई जी ने सभी दादियों की पालना में पले हैं, अव्यक्त बाप दादा को रात रात भर सामने बैठ करके देखे हैं, बाप दादा के महावाक्य को पूरा लिखना। और आप सबको एक चीज और खुशी की बात सुनाना चाहता हूं कि जब बाप दादा आते हैं तो जैसे ही गुलजार दादी वतन से नीचे आती है और कमरे में जाती है तो भाई साहब इतना जल्दी उसको मुरली को टाइप करके सबसे पहले गुलजार दादी जी को सौंप देते थे, ताकि बिल्कुल गरम गरम जैसे बाबा ने क्या क्या कहा। हम सब जानते हैं दादी जी को तो पता नहीं चलता था ना कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो ये भाई जी ये सुंदर सेवा ये सब भी किए हैं, और भाई साहब को हम सब आजकल टीवी में अनेक प्रोग्राम में देखते हैं, या भाई जी का यूट्यूब में अनेक क्लासेस हैं। लेकिन आज का एक छोटा सा प्रसंग, अभी हम 15-20 मिनट भाई साथ समय बिताएंगे। हम सब ये स्मृति मास, दादी जी का स्मृति मास मना रहे हैं, और दादी जी के साथ भाई जी को रहने का बहुत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक जिज्ञासा हम सब के मन में बनी रहती है कि चलो बाबा को तो हमने साकार में नहीं देखा, मम्मा को भी बहुतों ने नहीं देखा, लेकिन दादी जी में दोनों के गुण भाई जी ने देखे हैं। यज्ञ की शुरुआत से आप यहाँ यज्ञ में आ गए, अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त होने के बाद। तो भाई जी आपसे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि बड़ी दादी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ पर हुई और किस रूप में हुई।
सबसे पहली मुलाकात 1971 में, जब हमारे स्कूल की छुट्टियां थी, 9th में मैं पढ़ता था, 15 साल की उम्र थी, और मैं मधुबन में पहली बार आया था। उसके पहले देखा होगा लेकिन बचपन था
जी,
क्योंकि मम्मा दादियां ये सब दादियां 35 दादियां मेरे गांव में आई थी और मैं उस समय 4 साल का था, इसलिए मुझे वो दृश्य याद नहीं है। चाचा जी बताते थे, अभी लौकिक चाचा जी ने मार्च में शरीर छोड़ा, यहीं थे मधुबन में, वो बताते थे कि मैं तुमको कंधे पर बिठा के ले जाता था मम्मा की सामने, दादियों के सामने, लेकिन उस समय का दृश्य मुझे याद नहीं है। मैंने जब 71 में पहली बार मधुबन में आया बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो दादी जी को मधुबन में ही मिला, पांडव भवन में, और दादी जी ने पहला इंटरव्यू मेरा लिया, और वो इंटरव्यू ये था, क्योंकि दीदी और दादी की जोड़ी थी मधुबन में, दीदी मनमोहिनी जो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन में रहती थी, बाबा ने उनको अपनी यज्ञ की सारी इंटरनल कारोबार सौंपी थी। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी गाम देवी सेंटर से बॉम्बे से यहाँ आई, उनके ऊपर सारी जवाबदारी बाबा ने रखी, तो दीदी और दादी की जोड़ी थी। और दीदी दादी का एक लक्ष्य था कि इस यज्ञ को जितने संकल्प बाबा के थे साकार में वो सब पूरे करने हैं, यज्ञ का विस्तार करना है, विदेश में देश में सेवाओं को बढ़ाना है, जो बाबा ने कहा है तुम्हारे गली गली में सेवा केंद्र खुलेंगे, बहुत बड़ा विस्तार होगा, यज्ञ की वृद्धि। तो इन दादियों ने उस लक्ष्य को सामने रख करके मधुबन में सेलेक्ट करने लगे किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो जब मैं आया था शरीर से थोड़ा बड़ा दिखता था और बहुत एक्टिव रूप में एक महीना यहाँ सेवा दी थी, छुट्टी थी स्कूल की इसलिए रहा था, तो दीदी की नजर पड़ी कि ये लड़का बहुत भाग दौड़ करता है, बहुत सेवाएं करता है, और विशेष करके जो इनकी दादियों की माताएं बुजुर्ग थी, क्वीन मदर थी, देवी माता थी, रत्नमय दादी की लौकिक माँ, दीदी की लौकिक माँ और कई माताएं थी, तो उनके कमरों में जाना, उनको भोजन देना, उनको गर्म पानी देना, उनको जो आवश्यकता होती थी सेवा करता था मैं भाग भाग करके। तो दीदी ने सोचा कि ये यहाँ के लायक रह सकता है, लेकिन दीदी ने मुझे डायरेक्ट बात नहीं की और दादी को बोला दादी इससे इंटरव्यू लो, क्या यहाँ रहेगा ये। तो जो झूला पड़ा है पांडव भवन में बगीचे के अंदर, वही झूला बाबा के समय का ही है, तो दादी मुझे अपने साथ उस झूले पर ले गई और झूले पर दादी ने मुझे बिठाया। मैं तो बहुत छोटा था, डरता था, पहली बार वो समय था जो मैं एक झूले पर हम दोनों कम से कम एक डेढ़ घंटा बैठे और इंटरव्यू दिया। जो इंटरव्यू ऐसा था कि वही पूछ रही थी कितनी पढ़ाई किया है, मैंने कहा नाइन्थ में पढ़ रहा हूँ, नाइन्थ का पेपर दे के आया हूँ, तुम परिवार में कितने भाई बहने हो, मैं अकेला हूँ, कितने पिताजी के भाई हैं, मैंने कहा तीन के बीच में मैं अकेला हूँ। तो दादी सोचने लगी ये इकलौता बेटा है, तीन के बीच में एक है और अभी नाइन्थ में पढ़ रहा है, छोटी उम्र है 15 साल का, कैसे रखेंगे, दीदी की नज़र इसके ऊपर पड़ी है। तो दादी ने 3-4 प्रश्न पूछे और कहा ठीक है, दीदी ने ऐसे ही सोच लिया है तुम रह सकते हो यहाँ, लेकिन अभी तो उम्र छोटी है, पढ़ाई भी बहुत कम की है और लौकिक में भी तुमको छुट्टी तो मिलेगी नहीं। तो 3-4 बातें दादी ने मेरे को ऐसे बोल दी और मैंने भी प्यार से दादी को ऐसे हंसते जवाब दिया, दादी अभी तो विनाश होने वाला है, पिताजी को बहुत निश्चय था विनाश होने वाला है, तो विनाश जब होने वाला है तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो दादी हंसने लगी, कहती हाँ वो तो बाबा कहता है विनाश होने वाला है, लेकिन अभी उम्र छोटी है, निर्णय नहीं लेना इतनी जल्दी, और फिर भी अगर बहुत इच्छा हो ना तो घर में जाके 1 साल पढ़ो और पढ़ने के बाद हाई स्कूल कर लो, फिर पिताजी की चिट्ठी लेकर के आना। ठीक है, बस इतना कहा, ये इंटरव्यू दिया, फिर बाबा से मिले तो बाबा ने भी यही कहा जैसा दादी कहती दीदी कहती ऐसा ही करना। नजर तो सबकी पड़ गई थी और मैं गया तो वो 71 वाला युद्ध जो पुराने याद होगा, बांग्लादेश वाला, वो छिड़ गया दिसंबर में। इतनी जबरदस्त युद्ध की तैयारी, वहां पर साइरन बजता था, ब्लैक आउट हो जाता था, सब कमरों में बंद। तो मैंने कहा दादी कहती है अरे विनाश हो, विनाश अभी नहीं बाद में देखेंगे, ये तो विनाश शुरू हो गया और मुझे तो मना कर रही है। मैंने पेपर कैसे करके हाई स्कूल का पूरा किया और मैं 7 अप्रैल 1972 में पत्र लेकर के आ गया मधुबन में, और आते ही सबसे पहले फिर दादी ही मिली, और दादी पैदल कर रही थी, चक्कर लगा रही थी, मैं गेट में ज्यों घुसा ऐसे देखा, अरे तुम आ गया क्या, हाँ दादी, अच्छा दिखाओ पत्र, पत्र दो, खड़े खड़े ही, सामान नहीं उठाया रखा है, सब कुछ सामान साथ में, पढ़ा खड़े खड़े पढ़ लिया पत्र, और वो पढ़ते ही इतना प्यार से, अरे तेरे पिता को इतना निश्चय है क्या, उसमें ऐसे शब्द थे कि दादी जी इस सृष्टि पर भगवान का अवतरण हुआ, नई दुनिया बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आए, और उसमें मेरे बच्चों को अगर सहयोगी बनने का चांस मिल जाता है तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। और दूसरी लाइन में ये लिख दिया, दादी पहले बच्चे समर्पित कर दो फिर मैं भी समर्पित हो रहा हूँ, मुझे भी चांस दे देना। तो मेरी एक बहन तो पहले से समर्पित थी, मैं आया मैं भी समर्पित हुआ, और फिर थोड़े दिन के बाद माँ ने शरीर छोड़ा तो पिताजी भी समर्पित हो गए, चाचा जी भी समर्पित हो गए, सब मधुबन में आ गए। कुलदीपक है बाबा, वो नहीं छोड़ा, कुलदीपक बन के घर में रहता है, गीता पाठशाला चलती है, गांव वाले जो ज्ञान में चलते हैं वो संभालते हैं, खेती भी संभालते हैं और सब कुछ अभी तक वैसे ही चल रहा है, बढ़िया गीता पाठशाला है, लेकिन हम सब बाबा के समर्पित हो गए।
जी भाई जी, बहुत सुंदर। देखिए, बालपन से ही माता पिता और दादियों का पालना मिल गया। भाई साहब बता रहे 4 साल की उम्र में ही दादियों को देखा। भाई जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने यज्ञ को पूरा परिवर्तित हेतु देखा। आपका कहीं मैं क्लास सुन रहा था, वहां 72 में जब आप आए तो सब सेवा खुद करना पड़ता था, इवन गैस नहीं थे तो लकड़ी से ही खाना बनता था, कपड़े धुलाई के मशीन नहीं थे तो जहां धोबी घाट शांति स्तंभ है वहां पर आसपास कहीं धोबी घाट होते थे तो सब काम सब करते थे। और उसके बाद परिवार भी उस समय बहुत छोटा था, लेकिन दादी जी ने, बड़ी दादी जी ने इतना विस्तार किया यज्ञ को। आपने यज्ञ को इतना सुंदर परिवर्तित रूप में देखा, दादी जी को देखा, दादी जी की प्रशासनिक क्षमता को देखा। हम जानना चाहते हैं भाई जी कि दादी जी ने ऐसी क्या प्रशासनिक रीति अपनाई जिससे यज्ञ इतना सुंदर और सुचारू रूप से चलता रहा।
दो बातें सुनाता हूं। दादी जी कभी आदेश नहीं देती थी और कभी उपदेश नहीं देती थी, न किसी को आदेश दिया न उपदेश दिया, आदर जरूर दिया और उस आदर के कारण, उस सम्मान के कारण सबको अपने साथ लेकर के चली। जो कुछ दूसरों को कहना है वो पहले खुद आकर के करती थी, इसलिए मैं समझता हूँ जो सबका साथ सबका सहयोग मिला, जो आज यज्ञ का इतना विस्तार हुआ उसका कारण था वो कहती कम थी करती ज्यादा थी, पहले करती थी फिर दूसरों को इशारे में कहती थी। तो इसलिए उन्होंने कभी भी आदेश के रूप में कोई आर्डर नहीं किया ये करो, और कभी उपदेश नहीं दिया कि ऐसा क्यों किया है, खुद करके खुद सिखाया, खुद आगे बढ़ी, खुद अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाया और फिर हम लोगों को इशारे में सबको सिखा दिया। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा जो इतना विस्तार हुआ है उसका एक मूल कारण रहा उनकी बहुत बड़ी दिल थी, विशाल दिल, और विशाल दिल के कारण किसी से डिमांड नहीं, मांगना नहीं, मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, पालना देनी है, पालना देते चलो सब सहयोगी बन जाएंगे। तो उन्होंने बहुत बड़े दिल से सबकी पालना की, सबको स्नेह दिया, सबको सम्मान दिया और उसके आधार से सबको सहयोगी बना लिया, और उनका सबका सहयोग होने के कारण इस यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार हो गया। ये दीदी दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी और दोनों की एक मत थी और एक मत के कारण सबको साथ लेकर के चलने की कला थी। जितनी दादियां थी सबको अपने से बड़ा समझती थी, मैं बड़ी हूं, कभी मैं शब्द का दादी ने प्रयोग ही नहीं किया, सबको सम्मान दिया, सबको आदर दिया, सबको बड़ा समझ करके आगे बढ़ाया, कभी भी ये नहीं कहा मुझे बाबा ने हेड बनाया है, कहती थी मैं हेड नहीं हूं, जिस दिन हेड समझूंगी उस दिन मुझे हेडक हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ी नहीं हूं, मुझे निमित्त बनाया है, आप सब बड़े हो, सब मिलके करो, इसलिए यज्ञ बढ़ गया।
जी भाई साहब, सचमुच ये हमारे यज्ञ की शोभा है कि दादियों ने खुद अपने जीवन में पालन किया और उनको प्रैक्टिकल स्वरूप में भाई साहब ने अपने आंखों से देखा है। कई बार जो हम बाबा के पत्र, दादियों के द्वारा पत्र सेंटरों में जाते हैं, आप सबको पता हो भाई जी ही अपने हाथों से लिखा करते थे और दादी के साथ जा करके, दादी के साथ नजदीक बैठ करके, कहीं मैंने सुना था भाई जी आपका कि कभी भी भाई साहब दादी के सामने जब जाते थे तो स्टूडेंट के रूप में या भाई के रूप में नहीं बल्कि एक बच्चे के रूप में, पुत्र के रूप में, और पुत्र और माँ का जैसे संबंध दादी जी के साथ भाई जी का रहा है। आप जब पत्र लिखने के लिए जाते थे दादी के पास तो किस तरह की वार्तालाप होती थी, किस तरह का डायरेक्शन दादी जी आपको दिया करती थी जो पत्र आप सेंटरों पर भेजते थे?
भेजते थे भी और भेजते हैं भी,
जी
थे नहीं अभी भी है।
जी भाई,
दादियों ने बहुत प्यार से सब कुछ सिखाया है, जितने पत्र आते हैं अभी तक मेरे पास ही आते हैं, सबके जवाब देता हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे सेवा सौंपी थी पूरे पत्रों की जवाबदारी, वो दिन मुझे याद आता है। दीदी जब अव्यक्त हुई, दीदी के समय मैं मुरलियों से प्रश्न उत्तर निकाल करके देता था और उस प्रश्न उत्तर के साथ पीछे दीदी पत्रों का उत्तर लिखती थी। इंग्लैंड में थोड़ा सा जगह जो पीछे का होता, इंग्लैंड ही जाता था अधिकतर, तो वो पहले पत्र में प्रश्न उत्तर होते थे और दूसरे साइड में पत्रों का उत्तर होता था। लेकिन जब दीदी अव्यक्त हो गई, दादी अकेले हुई, तो पत्रों का बहुत ढेर हो जाता था। पूरे इंडिया के पत्र, विदेश के भी आने लगे थे। तो दीदी के अव्यक्त होने के बाद एक दिन यशु दादी और दादी जी ऐसे आंगन में बैठी थी पांडव भवन में, और मुझे बुला करके अपने बीच में बिठा लिया कुर्सी पर और कहती हैं कि एक सेवा तुमको करनी है। कहा बोलो दादी, क्या करनी है? कहती हैं अभी जो दीदी इतनी बड़ी सेवा बाबा के बात करती थी, पत्रों का उत्तर सबको देती थी, अब दादी के पास इतना समय नहीं है जो इतने सब पत्र पढ़े फिर उसका उत्तर दे, तुम ये सब पत्रों का उत्तर मेरे साथ दो। तो मैंने कहा, मैंने सोचा ये तो बहुत सहज सेवा है, दे दो दीदी दादी। लेकिन पहले दिन इतने सारे पत्र थे, 15 दिन के 8 दिन के इकट्ठे हो गए थे, कोई ने पढ़ा नहीं था, उत्तर नहीं दिया गया था, तो मुझे उठा करके यशु दादी ने सारी पोस्ट दे दी। और जब मैंने पहला ही पत्र खोला तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम किसी से एंटर की थी। मैं पढ़ करके जो खुशी थी, जो उमंग सा था, वो डाउन हो गया। मैंने कहा ये क्या, ये पत्रों का उत्तर मैं कैसे दूंगा, ऐसी ऐसी बातें हैं तो मैं कभी सुना ही नहीं है। तो शाम को मैं पत्र जो दो चार और देखे, इधर उधर देख करके चुपचाप रख लिया। अब शाम को मेरे को दादी हमेशा शाम को 4-4:30 बजे कमरे में बुलाती थी। कमरे में मोहिनी बहन होती थी और दादी होती थी, तो मोहिनी बहन को कहती थी, मोहिनी तुम रजाई ओढ़ के चद्दर ओढ़ के सो जा, मुझे राजू भाई से काम करना है। तो हम सोफे पर दोनों बैठते थे, दादी और हम, और चाय मंगा लेती थी दादी, कहती तुम भी पियो मैं भी पीती हूँ, जो माँ बेटे की संबंध था। बहुत प्यार से एक साथ ही बैठे रहते थे। फिर मेरे से पूछने लगी, क्या पढ़ा तुमने पत्र, सुनाओ। तो मैंने कहा दादी ये पत्रों का जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं आता। तो कहती क्यों ऐसा कहते हो? मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे पत्र आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहती है दादी बैठी है ना, तुम मुझे लाइन हेडलाइन लाइन लगा करके ले आया करो, पूछ लिया करो। अच्छा तो ठीक है, मैंने एक दिन दो दिन पत्र सुनाए। फिर दादी तो सरस्वती माँ की तरह ऐसे आंख बंद कर लेती थी, चाय पी करके बैठ जाते थे, और सभी पत्रों का एक साथ सुन लेना, 10-12 पत्र मैंने सुना दिए पढ़ करके, पूरे पत्र नहीं, कुछ हेडलाइंस, और ऐसे आंख बंद करके बैठ जाती, नाम सहित एक एक को, जैसे उस सेंटर को देख रही है, उस बहन को सामने देख रही है, और वो जवाब दे रही है, ऐसे लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। अच्छा लिखा दिया, 15-10-12 लाइन लिखाई, फिर दूसरा लिखाया, फिर तीसरा लिखाया, वैसे 10-12 पत्र एक साथ लिखा दिया। तो मैं लिखता रहता था चुपचाप। फिर कहती थी अभी तुम इसमें ज्ञान योग लगा करके कुछ और टाइप करके साथ में बड़ा पत्र करके भेज देना। ऐसे करके दादी के साथ रोज मेरा बैठना उठना हो गया पत्रों के कारण। और जब तक पांडव भवन में दादी रही तब तक मेरा डेली कहीं आना जाना नहीं, 4-4:30 बजे माना दादी को बुलाना ही है। तो मैं जाता था कमरे में बैठता था और ये 1.5 घंटे में सब पत्र लिख करके, पोस्ट लिख करके आता था, फिर टाइप करके भेज देता। जब नीचे आए, शांतिवन बन गया, तो शांतिवन में फिर शाम को नहीं बुला पाती थी, मुरली के बाद बुलाती थी, और मुरली के बाद बुला करके फिर जो डायरेक्शन उनको मुझे देने होते थे वो डायरेक्शन के रूप में, ये करना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये मुरली में ऐसे करो, मुरली में वरदान स्लोगन ये वो सब लोग कैसे एडिशन करो, ये सब दादी गाइड करते रहते, मैं करता रहता। तो ऐसे दादी के साथ पत्र व्यवहार करने का वो पूरा ही चार्ज जैसे सौंप दिया। मोहिनी बहन कुछ पत्रों का उत्तर लिख देती थी, कभी मुन्नी बहन लिख देती थी, और अधिकतर जो भी बड़े पत्र ऐसे आते थे, अभी भी जितने ड्राफ्ट के पत्र आते हैं, मनी ऑर्डर के आते हैं, वो सब हमारे ऑफिस से ही सबको जवाब जाता है।
सचमुच हम सब वो सीन इमर्ज कर सकते हैं कि कैसे दादी जी के साथ भाई जी आमने सामने बैठते थे और किस तरह से बातें होती थी। भाई साहब दादी जी से जो भी मिले उनको ऐसा लगता था कि दादी जी हमारी माँ हैं। एक बार भी जिसने भी मिल लिए, दादी जी वैसे मुख्य प्रशासिका थी लेकिन प्रशासिका के साथ साथ वात्सल्य प्यार देती थी। हम दादी जी के ये स्वरूप के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या विशेषता थी जो हरेक को दादी से माँ की भाषा आती थी।
सबसे बड़ी बात है कि वो क्षमा की सागर थी, क्षमा की मूर्ति थी। कोई की बातों को अंदर नहीं रखती थी। मान लो कोई ने मेरी कोई कंप्लेन कर दी, कोई ने बात मेरी उनको सुना दी, तो ऐसे नहीं मैं विश्वास करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दूं। तो दादी के बाद अगर दादी के पास अगर कोई ने मुझे मेरी बात सुनाई और दादी ने सुन लिया तो उसको अंदर अंदर समा लेती थी। समाने की शक्ति बहुत बड़ी थी। और अगर कुछ कहना होता था तो बड़े प्यार से इशारे में कहती थी कि ऐसी ऐसी कोई बात है सुनने में आई है, अगर है तो चेंज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको बड़ा रूप नहीं देती थी, बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत छोटे रूप में बहुत अच्छी तरह से जैसे उसको समा करके, उसको सम्मान दे करके, उसको युक्ति बता करके उसको पार करा देती थी। इसलिए कोई को भी दादी से हिचक नहीं थी, जाऊं न जाऊं, बोलूं न बोलूं। उनको ये लगता था दादी के पास गए तो सब हल मिल जाएंगे, शक्ति मिल जाएगी, कुछ युक्ति मिल जाएगी। इसलिए दादी से मात्र पालना की भाषा आती थी। लेकिन केवल मात्र भाषा नहीं थी, उनके पास लव और ला का बहुत बड़ा बैलेंस था। लॉफुल भी बहुत अच्छी तरह से कि अगर कोई ने कोई गलती श्रीमत की जो मुख्य मर्यादा पवित्रता की है, अगर उसका कोई उल्लंघन हुआ और उसके द्वारा उनकी कंप्लेन आई तो दादी सुनती नहीं थी, फिर कहती थी अभी तो तुमको इस भूमि पर ठहरने का कोई अधिकार नहीं है, ये पवित्र भूमि भगवान की भूमि है, इस भूमि पर ऐसी आत्माएं नहीं रह सकती। वो लॉफुल थी, फिर लॉफुल थी, लेकिन अगर कोई मूल मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे तो फिर वो एक दिन भी उसके लिए मोहल्लत नहीं देती थी, उसको तुरंत बिस्तर सहित भेज देती, जाओ यहां से निकल जाओ, अथॉरिटी थी, ऑर्डर करती थी फिर वहां पर। लेकिन वैसे मात्र स्नेही थे
जी। भाई जी हम में से अनेक लोगों ने दादी जी की मुरली के समय आपको याद करते देखा है। कई बार दादी मुरली सुनाते सुनाते, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, भाई जी हमेशा सामने ही बैठते हैं, तो कई बार मुरली के बीच में ही दादी जी कई बार आपको याद करते थे। भाई जी तो किस लिए आपको याद करते थे? मुरली के संबंध में कुछ बातें पूछने के लिए याद करते थे या व्यक्तिगत रूप से आपसे क्या वार्तालाप हुआ करता था दादी जी के साथ?
दादी जी का मेरे में कोई अटूट विश्वास था और अटूट विश्वास के कारण कभी भी दादी जी को अगर कोई भी मुरली के विषय में बात करनी हो तो मुझे ही आगे रखती थी। एक दो बार की बात मैं सुनाता हूँ। एक दिन दादी जी मुरली सुनाने आई और दादी को बहुत जोर से पेट में दर्द पड़ा, ऐठन हुई, मतलब बेचैन थी। तो मुरली सुनाने के पहले ऐसे चारों तरफ से नजर घुमाने लगी, ऐसे देखने लगी, मेरी तरफ ढूंढ रही थी मैं कहाँ बैठा हूँ, और मैं कोने में वो साइड में वैसे बैठा हूँ जैसे ओम शांति भवन में। तो दादी ने कहा राजू कहीं नहीं दिखाई देता, कहाँ बैठा है? तो मैं खड़ा हो गया, दादी मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर आओ। मुझे बुला लिया और कहती है मेरे कान में कि मेरे को थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मैं स्नान करने जाना चाहता, तुम मुरली सुनाओगे? और मुझे गद्दी पर बिठा दिया, जबकि सब बड़ी बहनें बैठी थी, चक्रधारी दीदी और कई बहनें बैठी थी सामने, जो बड़ी बड़ी बहनें थी, और वो मुरली मेरे हाथ में दे दी। और दादी उठ करके वहां से चुपचाप कमरे में आई, फिर तकलीफ हुई को लेट गई होगी, आई नहीं मुरली सुनाने, फिर रिपीट नहीं आई दोबारा। तो मैंने मुरली सुना दिया पूरी, दादी ने हाथ में दिया, अथॉरिटी दे दिया, सुनाओ मुरली। और मैं पढ़ना जानता था सिंधी, क्योंकि सिंधी में पढ़ रही थी दादी, तो मैंने वो मुरली लिया और क्लास में सुनाई। सुनाने के बाद तो नेचुरल है, सबकी बुद्धि चली। एक टीवी पर दादी आ रही और दादी अट गई, उसकी जगह पर राजू भाई आ गया, तो सबने देखा, चारों तरफ से हलचल हुई, क्या हुआ क्या हुआ। हमने दादी जी ने बुलाया, और वो तो जानती है मुरली का एक एक तो इसके बुद्धि में सब भरा हुआ है, तो मुझे दे दिया। मुझे क्या पता था, मैं तो कोई ऐसी स्टडी करके तो नहीं गया था, लेकिन फिर भी दादी का जो फेथ था कि ये जो सुनाएगा वो यथार्थ होगा, उसमें कोई ये नहीं कहेगा मैंने पढ़ा नहीं है या मैं कैसे इसको सुनाऊं। तो ऐसे एक दो बार ओम शांति भवन की स्टेज पर दादी ने मुझे मुरली दी पढ़ने के लिए। और साथ साथ अगर कोई बात होती थी, मान लो आज जैसे बाबा ने कहा भाग्य की लिस्ट बहुत बड़ी है, ये मुरली मान लो आज आ जाती और दादी जी सुना रही होती, अरे राजू तुम कहां बैठा है, उठो आज भाग्य की लिस्ट निकाल के ले आना। कितनी लिस्ट है भाग्य की, कई बार ऐसे ऐसे टॉपिक मुझे दे देती थी। और कभी कोई चेकिंग की बहुत सारी पॉइंट्स आती थी, अच्छा अच्छा राजू तुम आज इसका चार्ट बनाना और चार्ट बना के सब ब्राह्मणों को भेजना। मुरली से ही कोई ऐसी बातें जो मुरली में आती थी उसके आधार से मुझे उसी समय इशारा कर देती थी, अभी ये करना अभी ये करना। और मैं जाता था, जो दादी जी ने कहा मैंने किया, फिर उनसे पास कराया और सब सेंटर्स को भेजा। तो हर मास हर बात की मुरली में कभी प्रश्न जा रहे हैं, कभी चार्ट जा रहा है, कभी टॉपिक पर पॉइंट जा रही हैं, तो ये दादी मेरे से समय पर समय कराती रहती थी।
जी भाई जी,
तुझको करना आराम नहीं, तूफान आए तो आने दो।
कोरोना की इस विषम काल में भाई साहब ने बताया कुछ नहीं है और बहुत कुछ आने वाले हैं, तो हम चैलेंज करते हैं कि परिस्थितियों को हम अपने आत्मबल से दृढ़ता से दूर भगा देंगे।
इंसान आज है खतरे में, इंसानियत भी खतरे में, भारत ही नहीं मेरे भाई सारा संसार है खतरे में। उस हार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान ये तो आने दो।
शिव बाबा के उस सपने को हम पूरा करेंगे।
बाबा के बच्चों अब जागो, दुर्व्यसन बुराई का त्यागो, सोने की मृग माया भी है तृष्णा के पीछे मत भागो। नई जबानी नए खून को मुफ्त करो बदनाम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं तूफाए तो आने दो।
अभी सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। रेड लाइट और परमात्मा हमारी मूर्तियों को ऐसे शिल्पकारों के द्वारा गढ़ रहे हैं तो अपनी मूर्ति को फिर से तराशेंगे।
युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे सुवार दो जिंदगी हो खुशनुमा बस प्यार ही बस प्यार हो हाथों को अपनी सफल करो कहीं हो जीवन की शाम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं तूफान आए तो आने दो कोई कहे रुको तो कहने दो तूफान आए तो आने दो कोई कहे रुको तो कहने दो रुक जाना तेरा काम नहीं झुक जाना तेरा काम नहीं तुझक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उधर आए जब तक मंजिल ना मिल जाए धरती पर स्वर्ग उधर आए तुझको करना आराम नहीं तुझको करना आराम नहीं तूफान आए तो आने